आर्यन पार्किंग एरिया में पहुंच चुका था। उसके कदम तेज थे, जैसे दिमाग में पहले से ही कई बातें चल रही हों। इंद्र भी उसके पीछे पीछे आ गया। आर्यन, इंद्र की तेज आवाज सुनकर आर्यन रुक गया। उसने धीमे से अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और बिना पीछे मुड़े बोला, जो भी फैसला करो, जो तुम्हें सही लगे वही करना, बस इतना ध्यान रखना, फैसला ऐसा हो जिस पर तुम्हें जिंदगी भर पछतावा ना हो। आर्यन हर बात में हमेशा बहुत क्लियर रहा था। ये कहकर आर्यन फिर बाहर की ओर बढ़ने लगा। इंद्र के कदम कुछ सेकंड रुक गए, फिर वो जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। मेरी बात सुनो आर्यन, आर्यन प्लीज मेरी बात सुनो, इंद्र ने लगभग दौड़ते हुए कहा। आर्यन किसी गहरी सोच में था, शायद उस आदमी या काम के बारे में जिसके लिए उसे पार्किंग में बुलाया गया था। उसने झुंझलाहट दबाते हुए कहा, प्लीज इंद्र जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। इंद्र की सांसें तेज थीं, वो सीधे मुद्दे पर आया। देखो, मुझे इन शेरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं असली बात बताता हूँ। तुम सानवी की जिंदगी से चले जाओ, क्यों उसकी जिंदगी में तूफान ला रहे हो? जो कस्टडी का केस हम लोग हार गए वो कृति की वजह से हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो जेसिका और विक्रांत कपूरिया ने किया है। कंपनी में विक्रांत और जेसिका आए ये उनकी चाल थी, सानवी ने नहीं, इसलिए जो बदला लेना है उनसे लो। सानवी को छोड़ दो, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। आर्यन एकदम चुप हो गया। वो स्थिर होकर इंद्र को देखने लगा। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, बहुत ठंडी, जैसे भीतर कितनी ही बातें उफान मार रही हों पर वो उन्हें चेहरे पर नहीं आने दे रहा हो। इंद्र बोलता ही जा रहा था। आर्यन ने गहरी धीमी आवाज में कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो इंद्र? मुझे तुम्हारे शेयर नहीं चाहिए। इंद्र की सांस अटक गई, पर आर्यन आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखने लगा। देखो इंद्र, इस वक्त हम दोनों गुस्से में हैं, जब तुम शांत हो जाओ तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारे साथ बैठकर बात करूंगा। अभी रिलैक्स हो जाओ प्लीज, बाद में बात करते हैं। लेकिन इंद्र का गुस्सा फट पड़ा। दूर हो जाओ मुझसे, वो चीखा, मत छुओ मुझे। उसने आर्यन का हाथ झटकने की कोशिश की और हल्का सा धक्का दे दिया। आर्यन एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी शांत थीं। उसका चेहरा बताता था कि वो इंद्र की हालत समझ रहा है, पर माहौल में तनाव भारी हो चुका था। दोनों के बीच हवा ठंडी हो गई थी, जैसे अगला पल किसी बड़े तूफान की आहट हो। उन दोनों की तेज आवाज सुनकर वो आदमी, आर्यन का पुराना और भरोसेमंद मैकेनिक, पास आ गया। उसकी उपस्थिति से आर्यन और इंद्र दोनों की नजरें एकदम उसकी तरफ उठीं। असल में वो कई दिनों बाद आर्यन की गाड़ी चेक करने आया था। बीच में वो बीमार पड़ गया था, इसीलिए उसकी सर्विस अधूरी रह गई थी। वो धीमे लेकिन गंभीर स्वर में बोला, सर गाड़ी में छेड़छाड़ की गई है। दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। मैकेनिक झुककर कार के पास गया और बोला, इस गाड़ी के पुर्जे हाथ से खोले गए हैं, नट बोल्ट नीचे पड़े मिले, मतलब जो हिस्से गाड़ी में होने चाहिए थे वो अब नहीं है। उसकी बात काटते हुए भी दोनों का चेहरा उतर चुका था। इंद्र और आर्यन के बीच चल रही लड़ाई उसी पल खत्म हो चुकी थी। दोनों जैसे अपने स्थान पर जम गए। मैकेनिक ने आगे कहा, मेरे हिसाब से ये एक्सीडेंट एक्सीडेंट जैसा था ही नहीं। जिस पार्ट की छेड़छाड़ की गई थी वो एक्सीडेंट के समय नहीं गिरा, वो बाद में नीचे आया। आर्यन की आंखों में अजीब सी ठंडक उतर आई। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था? मैकेनिक ने गंभीरता से सिर हिलाया, नहीं सर, ये एक्सीडेंट करवाया गया है जानबूझकर। ये सुनकर दोनों के पैरों तले सचमुच की जमीन खिसक गई। हवा एक पल को रुक सी गई थी। एक वो था जो इंद्र का बड़ा भाई था, दूसरा वो जो आर्यन की बहन का पति था, और तीसरा छोटा सा जय, जिसके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका था। उन तीनों की दुनिया एक ही आदमी के जाने से बिखर चुकी थी, और अब ये जानकर कि वो मौत हादसा नहीं बल्कि किसी की चाल थी, उनके अंदर एक खामोश तूफान उठ चुका था। जेसिका आराम से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी। सामने विक्रांत तैयार होकर बाहर जाने ही वाला था, तभी बाहर से एक सिक्योरिटी गार्ड एक अनजान आदमी को लेकर अंदर आया। सर, आपके लिए कुरियर आया है, गार्ड ने आदर से कहा। अच्छा, दे दो। विक्रांत ने पैकेट लेकर तेजी से उस पर साइन किए। उसने पैकेट को थोड़ी देर उलट पुलट कर देखा, जैसे सोच रहा हो कि इसमें क्या हो सकता है। जेसिका ने ब्रेकफास्ट रोकते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या आया है, किसका है ये? विक्रांत ने बिना कुछ कहे पैकेट खोलना शुरू कर दिया। जेसिका उसके बिल्कुल पास आ गई। क्या है इसमें, उसने फिर से पूछा। जैसे ही विक्रांत ने पैकेट के अंदर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को एक एक कर देखना शुरू किया, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया, उसकी सांसें भारी हो गईं, और अगले ही पल उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। रिपोर्ट साफ बता रही थी जेसिका ने उसके बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया था। विक्रांत का गुस्सा उबाल की तरह फूट पड़ा। उसकी आंखों में सदमे, दर्द और विश्वासघात का मिला जुला तूफान था। उसने पूरे कागजों का बंडल जोर से जेसिका के चेहरे पर फेंक दिया। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, विक्रांत की आवाज घर की दीवारों तक हिला गई। जेसिका के कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये सच इस तरह उसके सामने आएगा। ये किसने किया होगा, इंद्र की आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। दोनों, विक्रांत और आर्यन, आंखों में आग लिए खड़े थे। मुझे उसी ने किया है, आर्यन ने ठंडी कट्टर आवाज में कहा। इंद्र हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। वो सोच रहा था कि जिस महिला की बात हो रही है उसका पति भी वही है और उसके सामने अब ये सब खुल चुका था। वहीं विक्रांत घर के अंदर था। उसका गुस्सा चरम पर था। उसने जो भी चीज़ टेबल पर पड़ी थी सबको उठाकर गिरा दिया। जैसिका डरकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। तुमने क्या किया? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। विक्रांत की आवाज़ घर की हर दीवार से टकरा रही थी। कमरे के बाहर छोटा जय खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। वो हिम्मत जुटाकर कमरे की ओर बढ़ा। वो टेलीफोन उठाकर जो उसी कमरे में पड़ा था कॉर्डलेस फोन लेकर बाहर आया। दीदी, यहाँ क्या हो रहा है? जय की आवाज़ में भय और घबराहट दोनों थे। सानवी ने तुरंत फोन उठाया। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी मगर प्यार से। क्यों, क्या हुआ जय? दीदी, अंकल और बुआ में लड़ाई हो रही है। अंकल बुआ पर बहुत गुस्सा है, बेसामान तोड़ रहे हैं। मैं बहुत डर रहा हूँ। मैं अपने रूम में छुपा हूँ। आप जल्दी आओ और मुझे वहाँ से ले जाओ। जय की आवाज़ कांप रही थी। डर साफ छलक रहा था। विक्रांत का गुस्सा अब जैसिका पर था। तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्यों अबॉर्शन करवाया? तुमने मुझे बताया तक नहीं, उसने रोते रोते पूछा। जैसिका कांपते हुए बोल पड़ी, सच्चाई से सामना करते हुए। असल में मैं बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम अबॉर्शन करवाने से रोक दोगे, इसीलिए मैंने ये सब किया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। आंसुओं की धार उसके गालों पर बह रही थी। विक्रांत का गुस्सा और दर्द दोनों साथ में थे। जैसिका का रोना और डर विक्रांत की आंखों में आग और दिल में खालीपन पैदा कर रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। जय, जो बाहर फोन पकड़कर खड़ा था, भी चुप हो गया। उसका छोटा दिल देखकर घबराया हुआ था। सभी की आंखें एक दूसरे पर टिक गई थीं। घर में जैसे तूफान आ चुका था, सिर्फ शब्दों का नहीं भावनाओं का भी। विक्रांत का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। जो भी सामान टेबल पर रखा था उसने सब जोर से फर्श पर फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। जैसिका डरकर पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। विक्रांत की आंखों में खून उतरा हुआ था। ये तुमने क्या किया? वो दहाड़ा, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। इसी शोर में जय अपने कमरे से बाहर आया। वो छोटा बच्चा कांप रहा था। डर से उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। कमरे के बाहर पड़े टेलीफोन का कॉर्डलेस फोन उठाकर वो तेजी से अपने कमरे में वापस भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने कांपते हाथों से सानवी का नंबर डायल किया। दीदी, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा, जय की आवाज़ डर से फट रही थी। सानवी तुरंत घबरा गई। क्या हुआ जय, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जय फुसफुसाते हुए बोला,
दीदी, अंकल और बुआ में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, सामान तोड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने कमरे में छुपा हुआ हूँ। आप जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाइए।
उधर कमरे में विक्रांत लगातार चिल्ला रहा था, बताओ तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा, किस हक से? जैसिका रोते हुए जमीन पर बैठ गई।
मैं उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगा अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे अबॉर्शन नहीं करने दोगे, इसी वजह से मैंने ये सब किया।
वो हिचकियों में बोल रही थी।
मैंने गलती की विक्रांत, लेकिन मैं डरी हुई थी, अकेली थी।